अभी 2 मिनट है, कोई फिर कहेगा तो फिर।
ओम परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम या मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भवतां सर्वेषाम् एकदा पुनः स्वागतं धन्यवादं च। नमस्ते। इदानीं पर्यन्तम् अध्यायत्रयं संजातम्। तत्र तेषु अध्यायेषु किम् आसीत्? तस्य नाम आसीत् नैघण्टुकं काण्डम्। अत्र काण्डत्रयं, तो नैघण्टुकं काण्डे किम् आसीत्? नैघण्टुके काण्डे आसीत् प्रथमाध्यायत आरभ्य तृतीय परिसमाप्तौ, अर्थात् तृतीय अध्याय पर्यन्तं यद् प्रतिपादितं निघण्टौ, एकस्य अर्थस्य बहवः शब्दः तत्र प्रतिपादितः, यथा गौगमजम इत्यादयः मनुष्यनामानि, मनुष्य एक एव, तस्य प्रतिपादितानि शब्दानि, तदर्थं प्रतिपादितानि शब्दानि तत्र बहवः, 25 शब्दाः सन्ति, किन्तु एकस्य अर्थस्य वाचिकः। किन्तु इदानीम् अत्र निघण्टौ चतुर्थ अध्याय आरंभते, अस्य नाम वर्तते नैगमः काण्डम्। नैगमः काण्डम् एकपदिकं च काण्डम् नाम द्वयमिति, नैगमः नाम निश्चयेन गमयति बोधयति अर्थमिति, निगमः तत्र भव नैगमः। पूर्वं किम् आसीत् कि तत्र ये शब्दाः पठिताः तेषां सर्वेषां शब्दानां निर्वचनं पूर्वं तत्र न आसीत्, आसीत् न वा? केवलं हिरण्यनामानि तु हिरण्यस्य आसीत्, चतुर्दश अवशिष्टानि एवमेव तत्र आसीत्। किन्तु इतो अग्रे आ निरुक्त परिसमाप्तौ, ये शब्दाः तत्र निरुक्ते पठिता भगवता यास्केन, सर्वेषां शब्दानां निर्वचनम्, अधिकांश शब्दानां च मन्त्रः अत्र प्रदीयन्ते आचार्यै। तो अस्य नाम एक पदिकं काण्डम्, एकम् एकं पदं नीत्वा निर्वचनं क्रियते इति एक पदिकम्, अनेन अपि भवितुम् अर्हति। और निगमनात् प्रत्येकस्य पदस्य निर्वचनात् नैगमः काण्ड इति। अग्रे अवशिष्यते सप्तमाध्यायतः आपरिसमाप्तौ निरुक्तस्य दैवत काण्डम्, अर्थात् देवताविषये यत्र चर्चा मुख्यरूपेण चर्चिता तस्य नाम दैवत काण्डं वर्तते। चलामः। एकार्थम् अनेक शब्दम् इति एतदुक्तम्। एकस्य अर्थस्य कृते अनेके शब्दाः तत्र नैघण्टुके काण्डे प्रतिपादितः। किन्तु अत्र किं वर्तते? अथ यानि अनेकार्थानि एक शब्दानि, अनेक पूर्वं किम् आसीत्? अर्थस्तु एक शब्द बहव। अत्र किं वर्तते? शब्द अनेके अर्था एक शब्द, और पूर्वं किम् आसीत्? पृथ्वी एक अर्थ आसीत्, शब्द अनेक एवं विभिन्न, यानी अनेक अर्थानि एक शब्दानि, अनेके अर्थ कस्य? एकस्य शब्दस्य। तानि मानि एक शब्दानि, तानि अतो अनुकर्मिष्यामः, अतो अग्रे इतो अग्रे तेषां वर्णनं करिष्यामः। अनवगत संस्काराश्च निगमानि, येषां शब्दानां संस्कारश्च न अवगमयति कोऽपि, तेषां निगमान् निश्चयेन अर्थबोधकान् वयं वर्णिष्यामः। अवगत संस्कारं किं भवति? व्याकरणानुसारेण साक्षात् यस्य अर्थस्य व्याकरणानुसारेण अर्थो भवति, अवगत संस्कारः। किन्तु अत्र व्याकरणानुसारेण अर्थो न उबुद्यते, साक्षात न उबुद्यते, तस्य अर्थम करणीयम् इति। तस्मात् अनवगतः संस्कारो ये शाम ते अनवगत संस्कारा ते निगमातान अनवगत संस्काराश्च निगमान अत्र वयम् वर्णिष्याम। तद् एकपदिकम् इत्याचक्षते, अस्य नाम किं वर्तते? एकपदिकम् काण्डम्। आम्, और नैगम कांडम तो वर्तते, एक एक पदस्य निर्वचनम क्रियते ना, पूर्वम नासी तादृशी स्थिति यथा जहा निधा सिताम इत्यादि सर्वेशाम पदानाम निर्वचनम भवति, किंतु तत्र किम आसीत्? पृथ्वी नाम धयानी, तो गौ अस्य निर्वचनम आसीत्। हिरण्य नामानी पंचदश, हिरण्यस्य आसीत्। चतुर्दश कुत्र गता न जाने, किंतु अत्र एवं न वर्तते, एकैकस्य पदस्य निर्वचनम् अत्र क्रियते, तस्मादस्य नाम एकपदिकम्। जी, एकम एकम पदम कृत्वा, एकम एकम पदम, पूर्वम एकम एकम पदम से निर्वचनम न भूत ना, पहले जो है एक एक पद का निर्वचन कहाँ किया? गौ का, पृथ्वी का दे दिया। अनेक अर्थ यदि संभाव्यन्ते तो दास्यन्ति, यदि न संभाव्यन्ते तो एक एव अर्थ इति। सर्वथा यदि एकस्य एको एव अर्थो भवति तो कथं दास्यन्ति? येस अस्य अयम अर्थ है, येषां पदानाम अनेक अर्थ तेषां अत्र प्रदीयन्ते, न सन्ति एक एव अर्थ वर्तते तर्हि न दीयन्ते। कस्य पूर्वानुसारेण कथम करिष्यन्ति? यहाँ तो जहाँ एक शब्द वर्तते तत्र पंचविंशति शब्द पृथ्वी नाम ध्यानी आसन, एक विंशति शब्द पृथ्वी नाम ध्यानी आसन। अत्र तो किम पठितम? निघंटो पुरस्तात् वर्तते न वा, पश्यन्तु किम पठितम्? पदानि, केवलम एते पदानि सन्ति, कस्मिन् अर्थे सन्ति वयम न जानीमः, व्याख्याकार है जापिता। केवलम पदानि, पद्यते गम्यते अर्थो अनेन इति पदम, किंतु कः अर्थो अनेन गम्यते वयम न जानीमः। यदा यह जानाति तेन संग्रह कृता, किंतु व्याख्याकार जानाति इदानीं से व्याख्यां करोति, किंतु तत्र एवम न आसीत्। पूर्वम गौ गम जम इत्यादि पृथ्वी नाम देवानि, अर्थात एतेषां शब्दानां पृथ्वी वाचका अर्थ सन्ति, किंतु अत्र न जायते जः को अर्थ इसी। उभौ उभे भवत उपसर्ग निपाते तो अत्र न सन्ति, एकदा किंचित वर्तते भी, किंतु अत्र पदानि नाम आख्यात जानी नामानि मुख्यतः, यदा कदा निपाते भी भूति वर्ति उपसर्ग तो अत्र न प्रतीयत। जहाँ एक पदम वर्तते व्याकरण ने को अर्थ न जायते, नहीं वा वेद जहाँ एव वर्तते अन्यद न, किंतु जहाँ से को अर्थ वयम न जानी में साक्षात लोके नास्य प्रयोगो भवति न व्याकरणे प्रतिपादितम्। तो कोस्य जहाँ इति अस्य शब्दस्य अर्थ क्रियापदम वर्तते वा सुबन्तम वा वयम न जानी में, केवलम पदम वर्तते एतत् तो जानी में, इदानीं जास्यामः। जहाँ अस्य को अर्थ वयम न जानी में, जहाँ पदम तो वर्तते, केन हेतुना पदम वर्तते? अपदम न परिंजित है, वेदस्य प्रयोग तो संजात है, किंतु को अर्थ न जानी में, क्रियापदम वर्तते वा सुबंतम वा निपातो वा वयम न जानी में। तो जहा नाम जघान हतवान इति अर्थ, तो अस मंत्र मंत्रे प्रदीयते को नु मर्या अमिशि अमितित, क्या किंचित मिथित वर्तते किं एकदम ददातु किंचित करते तम वर्तते मिथित को नु मरिया अमिथित सखा सखाय मैं ब्रवीत जहा को अस्मत ईशते। इदानीं परस्परम ये मित्रा संति परस्परम वार्ताम कुर्वन्ति कि को नु मरिया न कह कह नु निश्चयेन अथवा पदपूर्णे मर्या मनुष्य अमितित, अमितित नाम अनाकृष्ट, अनाकृष्ट नाम मैत्रीहिंसायाम अहिंसित, सखा सखायम अब्रवीत, सखा मित्र सखायम मित्रम अब्रवीत, अर्थात केनपि मित्रेण कस्यपि हिंसा न करता तो सवदति कि कोनु मरिया मनुष्येषु अमतिता अहिंसिता सखा सखायम अब्रवीत, अर्थात स तद मित्रम कस्यपि हानि न करोति किंतु कोपि तस्मात् विभेति, ये तक किमपि कर्तुं शक्नोति मित्रादभयम् अमित्रादभयम् मंत्रम अबुध्यते बुद्धौ। तो सवदति जहा को अस्मत ईद से अहम कम जघाना, कहा अहम जघाना मैंने किसको मारा, मैंने तो भाई किसी को भी नहीं मारा है, तो अस्मत ईस्ते अस्मात कह पलायती कह विभेती, हमसे तो डरने की कोई बात नहीं, हमसे तो चैटी भी नहीं डरती, आप क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो चैटी को भी मित्र की दृष्टि से देखते हैं और आप तो हमारे मित्र ही हैं।
कौन कह रहा है?
विक्रम जी कह रहे हैं।
कोई भी कह सकता
है, इसको कहना है, ये कह रहे हैं कि मित्र को आपस में विश्वास होना चाहिए, जिससे मित्रता कर ली है उस पर विश्वास ना करो, नहीं तो मित्रता चलेगी नहीं। वो उससे डर रहा होगा दूसरा मित्र कि भाई पता नहीं है क्या कर दे, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ये है, किसी ने बहका दिया, तो वो कह रहा है कि भाई मेरे से डरने की जरूरत नहीं, हमने तो किसी को आज तक मारा ही नहीं, तो आप तो मित्र, हमने तो शत्रु को नहीं मारा, पिटते रहे हम तो बैठे बैठे, आए तो अपना बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते रहे और पिटते रहे, तो जब आप, हम तो शत्रु को भी हमने नहीं पीटा है, तो फिर आप हमसे क्यों डर रहे हैं, हम तो पिटने वाले हैं, गांधी जी के शिष्य हैं,
है ना। हैं
स्वामी दयानंद जी के शिष्य हैं तो फिर भी मित्र से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मैंने कहा कर रहा हूँ, मैं तो उनके लोगों की बात कर रहा हूँ, ये तो प्रसंग अनुसार मैंने बता दिया कि हम तो इतने सीधे साधे हैं, शत्रु को भी नहीं मारते, फिर आप हमसे क्यों डर रहे हो, यहाँ तो चींटी को मारने में भी पाप समझा जाता है, तो हम आपको कैसे मार देंगे, इतने बड़े सृष्टि के निर्माता ने आपको बनाया हुआ है, इतना बड़ा पाप कैसे कर देंगे हम, तो ये तो वैसी बात मैंने हंसी में कह दी, बाकी शत्रु है तो उसको छोड़ना थोड़ी। हम मैंने तो किसी को हिंसित नहीं किया ना, ओ जगह कहा अहम जघाना, मैंने तो किसी को मारा ही नहीं है, मारना और हिंसा करना दोनों अलग बात है ना, पिटाई में हिंसा आ जाएगी और मारना मतलब जान से मारना, जघाने का तो वही प्रयोग होता है हतवान, तो मैंने तो किसी की हिंसा भी नहीं की, ना किसी को मारा है, फिर अस्मद ईश्ते हमसे कौन, आप क्यों डर रहे हैं, हम तो इतने सीधे साधे हैं, वो पूर्ण हिंसा है, आदि हिंसा, हिंसा के 84 प्रकार हैं, 81 हैं, तो 3 कम कर लो। मरिया इति मनुष्य नाम है, मरिया क्या है, मनुष्य का नाम है, मर्यादा अभिधानम व स्यात्, तो मर्यादा अभिधानम व स्यात्, तो मरिया कौन है कि मर्यादा के द्वारा ही इनका ध्यान है, ध्यान देने की बात है, मनुष्य की एक मर्यादा होनी चाहिए, हंसी मजाक की भी एक मर्यादा है, खाने की भी एक मर्यादा है, व्यवहार की भी एक मर्यादा है, अगर आप मर्यादा में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं दुखी तो पहले से ही और दुखी हो जाएंगे। मर्यादा मर्यय आदियते, और मर्यादा अकस्मात मर्यय मनुष्य आदियते, मनुष्य ने बनाई हुई है या मनुष्यों को सुखी रहने के लिए बनाई गई है, तो इस मर्यादा को जो स्वीकार करेंगे, मर्यादा क्या है, एक प्रकार का नियम, ईश्वर ने तो जान दिया था, मर्यादा तो मनुष्य ने बनाई है, ईश्वर ने तो बनाई नहीं, ईश्वर ने तो जान दिया था, व्यवस्था मनुष्य ने बनाई है, ईश्वर ने तो, भगवान ने इंसान को इंसान बनाया था, और हमने कहीं भारत पाकिस्तान बनाया था, तो पाकिस्तान की जो एक मर्यादा बना दी कि यहाँ तक भारत और यहाँ पाकिस्तान है, ईश्वर ने थोड़ी बनाई है, मर्यादा का सीमा भी है, दोनों अर्थ, और मर्यादा जो हमने बनाई है, जैसे ये मर्यादा है कि भाई अपनी सीमा में रहे, अपनी ब्रह्मचर्य के जो नियम है वो एक मर्यादा है, तो मर्यादा वेद में तो ब्रह्मचारियों के गुणों का तो वर्णन आ गया, पर ऐसे रहो वेद में थोड़ी है, तो उसके लिए ऋषियों ने मर्यादाएं बना दी कि ब्रह्मचारी की ये सीमा है, इससे वो बाहर नहीं जाएगा, आचार्य की ये सीमा है, गृहस्थी की ये सीमा है, आदि आदि, ये तो वेद का ज्ञान लेके ऋषियों ने बनाई है, वेद परमात्मा ने तो ज्ञान जरूर दिया था, उस ज्ञान का विकास जो है मर्यादा है, और उस ज्ञान का दुरुपयोग सीमा है, ज्ञान का दुरुपयोग सीमा है। आज सारी समस्या एक ही राष्ट्र हो तो क्या कोई समस्या बचेगी, क्यों जी, और न जनसंख्या की समस्या बचेगी, क्योंकि बहुत से राष्ट्र खाली पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 करोड़ जनसंख्या, भूमि भारत से ज्यादा है, तो आधी जनसंख्या वहां भेज दी जाएगी ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। एक ही राष्ट्र होगा तो राजा व्यवस्था करेगा ना। तो इसलिए ये मनुष्यों ने अपने स्वार्थ और लालच के कारण बनाई है जो सीमा है, और ऋषियों ने हमारी उन्नति के लिए मनुष्यों की मर्यादा बनाई है। हाँ, मर्यादा का अर्थ है कि व्यक्ति अहंकार करता है तो अपनी मर्यादा को तोड़ता है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ लिया या ज्यादा पढ़ लिया, व्यक्ति को लगता है कि नीचे वाले तो कुछ भी नहीं, तो वो भी आपकी मनुष्य की मर्यादा को तोड़ता है ना। मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए और वो अहंकार से वहां बैठ गया है। तो ये सारी एक मर्यादा है, ब्रह्मचर्य की एक मर्यादा है कि उसको इन नियमों का पालन करना है। उसको सप्त मर्यादा कवे है ततक्षु, वो 7 मर्यादा मंत्र में भी आता है, और निरुपकार आगे खुद बताने वाले हैं 7 कौन सी है। आगे आई है धारणा की स्थिति, धारणा का अर्थ वो धारणा थोड़ी ध्यान योग चित्त वाली, धारणा का अर्थ तो जो धारण की जाती है, धारितुम योग्या धारणा। मर्यादा मतलब ये नहीं कि वो धारण करनी ही पड़ेगी, ये नहीं कि हमारे लिए बना दी तो हम धारण नहीं करेंगे तो पशु थोड़ी करेंगे, हमें ही करनी पड़ेगी वो। मर्यादा मर्यादिनो विभाग है, मर्यादा का एकस्य अर्थस्य वर्तते मर्यादिनो विभाग है। मर्यादा मर्यादिनो विभागम अपि करोति सा मर्यादा, मर्यादिना कौन है, मर्यादा जिनकी है, तो विभाग कर दिया कि ये क्षेत्र ब्रह्मचारी का है, ये क्षेत्र गृहस्थी का है, ये क्षेत्र सन्यासी का है, ये वानप्रस्थी का है, ये राजा का है, ये ब्राह्मण का। राजा का क्षेत्र क्या है, उसकी एक मर्यादा है कि वो शत्रु को दंड देगा ही। ब्राह्मण का क्षेत्र क्या है कि वो वेद पढ़ेगा ही, उसके बिना वो बन नहीं सकता ब्राह्मण, और वेद का प्रचार करेगा। ये सारे जो नियम है ये मर्यादा है हमारी। और मर्यादिनो विभागा इसका दूसरा भी अर्थ घटता है। मर्यादिनो विभागा नाम है मर्यादा जिनकी है, मर्यादा नाम है सीमा। अब मर्यादियों का विभाग होगा, 2 मर्यादी हैं, कौन है, एक भारत और पाकिस्तान, चीन और भारत, जिसकी भी बांग्लादेश और भारत, जिसकी भी भारत से सीमा लगे हैं वो सब मर्यादी हैं। तो उसकी एक बना दी कि यहाँ से आपकी और यहाँ से हमारी, है जो रेखा है जो वो मर्यादा है, सीमा उसी को कहते हैं। मेथति आक्रोशति कर्म, मेथति कस्मात आक्रोशति कर्म, अहम कम आक्रुष्टम, मैंने किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया फिर भी मेरे से लोग डरते हैं। मेथति हिंसा कर्म धातु पड़ी हुई है, अमिथिता पड़ा हुआ है ना मंत्र में, हाँ निर्वचन कर रहे हैं। निधा पाश्य भवति द्वितीय शब्दम वर्तते, अब इदानीम किम अभूत, जहा अभूत, इदानीम निधा पाश्य भवति, निधा का अर्थ क्या कर रहे हैं, पाश्य, पाश्य नाम है पाशयति इति सत, जो व्यक्ति को बांध लेती है। क्या छूट गया ये मेरे में है नहीं, वो कौन सा आप लोगों वाले ले लेंगे हम, अच्छा लो इसमें इतनी त्रुटियां कैसे की हुई हैं। अच्छा अपाप कम जगान कम हम जातु, आक्रोश करना मतलब चिल्लाना क्रोध करना, ये आक्रोश है सारे नहीं, वो क्या मर्यादा से संबंध नहीं, मंत्र के एक वचन की व्याख्या कर रहे हैं कि मैंने तो किसी के ऊपर आक्रोश ही नहीं किया ना। अमथिता को कह रहे हैं स्वामी जी कि जब मैंने किसी के ऊपर आक्रोश ही नहीं किया फिर मेरे से लोग डर जाते हैं, बताओ, हम तो सबका चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें फिर भी लोग हमसे डरते हैं, या तो वो सुखी नहीं रहना चाहते। अपापकम जगान कम अहम जातु, अहम निश्चय रूपेण जातु निश्चित रूपेण, अपापकम जगान कम अहम, अहम कम अपि अपापकम, पाप अविद्यमान पाप यस्य यस्मिन तम अपापकम कम अहम जगान, मैंने तो किसी अपापी को मारा ही नहीं है, मतलब अर्थात मैंने तो सारे पापियों को मारा है, आप तो पापी हो नहीं तो हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापियों को तो मारेंगे छोड़ेंगे कैसे, पापी नहीं हमें मार देंगे वापस। नहीं ये तो वो मंत्र कह रहा था, व्याख्याकार कह रहा है कि मैंने तो पापी को मारा है, पाप कम कम है हम जगाने, इसका अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, मैंने तो किसी भी पापी को नहीं मारा है, मतलब अपापी को नहीं मारा अर्थात पापी तो मारा, अब ईश्वर पापियों को छोड़ देगा तो पापी ईश्वर को छोड़ देंगे क्या?
मंत्र में ऐसे कहा है कि अपापी
क्यों नहीं आया मंत्र में?
उसमें नहीं मारा ये है पापी
चाहे जग जहा को अस्मत ईश्ते कम कम अहम जगाना है, तो निर्वचन तो इन्होंने कर लिया। कोनु मरिया अमित, मेरे से कौन अहिंसित से डरता है? सखा मित्र को मित्र कह रहा है। जहा कहा अस्मदी से, जहा जगाना अहम कम अहम जगाना है। जहा का अर्थ है क्रिया है ना, तो क्रिया है तो कर्ता कौन होगा? अहम। और कर्म कौन होगा? कम। वो तो अध्यार अपने आप हो जाएगा। कम अहम जगाना है, मैंने तो किसी को नहीं मारा, तो कम अहम जगाना नाम है। कम अहम अपाप कम जगान है, मतलब मैं तो किसी इंद्र है आखिरकार, तो पापियों को कैसे छोड़ेगा? राजा है, राजा पापियों को छोड़ देगा तो राजा पापी नहीं है क्या? उसके घर में जाके मारता है भाई उठा उठा के, ऐसे नहीं छोड़ सकते पापियों को। तो ये हो गया। को अस्मद भीत पलायते, अस्मद भीत भयम प्राप्य को पलायते, हमसे तो डर के कोई भागना नहीं चाहिए, अर्थात पापी भागते हमसे। तो या तो आप पापी हो जो हमसे डर के भाग रहे हैं, या फिर ठीक हो जाओ। चलो जी हो गया, अच्छा ही मिल गया इसमें, ठीक रहा ये खुल गई बात। निधा पाश्य भवति पाशयति इति पाश्य, यन निधियते पाश्य पाशमुहे, यन निधियते जिसको नीचे ही दियते, निधियते जाल को बिछा देता है ना शिकारी और समुद्र में ये डालते हैं। यन निधियते जो नीचे दियते धारियते पाश्य पाश समूह है, जालों का ऊपर तो डालते हैं, पर मछली ऊपर थोड़ी घूम रही हो तो नीचे ही जाएगा जाल तो।
ये का ये अर्थ
है। हाँ, पाश पाश्यते पाश्य पाश समूह है। ये कैसे बना? पाशा दिव्यो ये समूह अर्थ है, पाशा नाम समूह है, पाश्य पाशा दिव्यो ये पाणिनि का सूत्र है। पाश पाश्यते विपाशनात्, पाश अकस्मात पाश्यते पश बंधने बंधयति विशेष है ना बंधनात्, क्योंकि उसमें जो फंस जाता है निकलता नहीं है। अब ये अब कौन है? ये प्रिया मेधा हैं और इंद्र के पास गई हैं और उनको कहा है कि भाई हमें बंधनों से निकाल दो। तो वो कौन से बंधन है? वो हम सब उसमें बंधे हुए हैं, निकलना हम भी चाह रहे हैं, वही बंधन है। मोक्ष में ही सारे बंधनों से छूट मिलेगी, तो उसी की प्रार्थना है। वय सुपर्णा उपसेद इंद्रम किम, बिना वेद पढ़े छूट कैसे जाएंगे? ये तो वेद तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिसकी प्रिय मेधा है विशेषण है, रश्मियों का विशेषण है, ऋषिय नाम है रश्मया, रश्मियों का विशेषण है। इस मंत्र का देवता तो मरुत है, और सूर्य रश्मिया भी हैं इसके बारे में। वय सुपर्णा उपसेदु इंद्रम, ध्यानेन पाठ भी करनीयम। वय सुपर्णा, वय नाम वयति गच्छन्ति इति वय गंतार, सुपर्णा सोवनानि प्रणानि पूर्वमपि आगात सुपतना, पूर्वम किम आगात? सुपर्णा नाम सुपतना। उपसेदु इंद्रम, उप समीपे सेदु, सेदु नाम उपसन्ना सेदु अतिष्ठन, कुत्र इंद्रम के ते ये इंद्रम उपसेदु प्रिय मेधा ऋषिय नाधमाना, नाधमाना प्रिय मेधा ऋषिय वय सुपर्णा इंद्रम उपसेदु इति अन्वय। ऋषि प्रकाश का भवंती, ऋषि दर्शनात् जिन्होंने दर्शन किया है इंद्र को, जो देख रहे हैं वो इंद्र के पास देखते देखते पहुंच गए। ये हैं मरुत या सूर्य रश्मिया, दोनों हैं। यहाँ घटना कहाँ की है? घटना द्युलोक की है। सूर्य को चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा हुआ है, सूर्य के अपने अश्व हैं जो सूर्य से पैदा होते हैं, किंतु सूर्य उनके बिना कुछ नहीं है, भले वो सूर्य से पैदा हो रहे हों। तो ये घटना है कि जब रात्रि हो गई है, उषा आने वाली है, उस घटना को बताने के लिए सूर्य रश्मिया सूर्य से कह रही हैं कि हे सूर्य देव, आप क्या करो कि लोग अब उठने वाले हैं, वो उठेंगे तो अपने कार्यों को करेंगे, उनके लिए प्रकाश चाहिए, तो आप हमें बंधन से मुक्त करो। हम भी बंधन में बंधे हुए हैं। अपध्वान्तम् उर्णुहि, ध्वान्तम् अपध्वान्तम् उर्णुहि, ध्वान्तम् नाम है तमसा अंधकारम, अपारुणिहि अपारुणिहि नाम है परिहर दूरम कुरु, पूर्धि चक्षु और चक्षु पूर्धि आंखों को खोलने की ताकत दो, क्योंकि अंधेरे में आंखें खुलती नहीं। मुमुग्ध अस्मान निध्य पासन, मुमुग्ध नाम है
छोड़ दो,
हाँ मुंच मुमुग्ध नाम है पुनर पुनर भृषम मुंच मुमुग्ध, हमें जल्दी जल्दी से छोड़ो, और कैसे छोड़ो निध्य बद्धान, जैसे जाल में बंधी हुई मछलियां या जाल में फंसे हुए पक्षी, जैसी उनकी कामना होती है कि कोई आए और हमें जल्दी से छुड़ाए, वैसे ही आप हमें जल्दी से छोड़ के पृथ्वी लोक पे भेजे। ये सूर्य रश्मियां जो हैं सूर्य से प्रार्थना कर रही हैं, सूर्य रश्मियों का पाश है कि वो पृथ्वी पे नहीं आ पा रही हैं, अंदर अंदर घूम रही हैं।
है
किसका, ठीक कह रहे वैसे तो दृष्टि सातत्य का भ्रम है कि जो रश्मियां यहाँ आनी चाहिए तो उनको तो आना चाहिए ना, यहाँ नहीं आ रही। अच्छा सभी चीजों का पाश अंधकार ही है, मनुष्य का अज्ञान ही सबसे बड़ा पाश है, किरणों का अज्ञान ही है कि उनको प्रकाश नहीं मिल रहा, वो बंधी हुई है, वो उनका काम है किसी को किसी के काम से रोक दिया जाए तो उसका पाश है या नहीं है, किसी को किसी के कार्य से रोक दिया जाए जो 24 घंटे कार्य करने वाले हों,
वो तो काम कर ही रहे 24 घंटे सो कुछ नहीं रहा, उधर पड़ी है।
अब बात ये है कि इन चीजों को समझने के लिए वही होता है कि इसके तत्व में जाना पड़ेगा, और तत्व में जाने के लिए तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और तत्व ज्ञान होने के लिए गहन अध्ययन होना जरूरी है। अभी तो इतना ही समझ लिया जाए कि ये सूर्य की रश्मियां हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लिया जाए कि हमारी वृत्तियां हैं, वो जल्दी समझ में आ जाएंगी क्योंकि सबका अनुभव है, तो वो हमारी वृत्तियां हैं सात्विक वृत्तियां हैं, उनको वो नादमाना भी हैं, वो प्रिय मेधा भी हैं, सारे विशेषण उसमें घट जाएंगे, और वो ऋषियां भी हैं क्योंकि वो गति कराने वाली हैं, तो वो अंधेरे ने ढक लिया है, रजस तमस ने उनको पकड़ लिया है, और अब वो प्रार्थना कर रही हैं किससे, इंद्र से। इंद्र कौन है, आत्मा, पहले आ ही चुका है कि जल्दी से हम इसे बंधन से मुक्त, ये तो जल्दी से समझ में आ गया। उपमा तो सीधी उपमा बन रही है कि जैसे पासों में वो बंधे हुए हैं, हम भी पासों में बंधे हुए हैं,
पासों में किसी ने छुड़वाते नहीं है मछलियों को, पर उसका इच्छा तो होती है, पर इसको छुड़वाने की उपमा है।
अच्छा अगर वैदिक राज आ जाए और कोई भी आज की परिस्थिति ऐसी मंत्र को भी घटा रहे हो मछली को छुड़वाते नहीं, तो कोई मछली खाने वाला छोड़ेंगे क्या हम, हाँ ब्रह्मचारी क्या करेंगे, मछली की तरह उनको जाल में लटकाएंगे, समुद्र में मारेंगे नहीं पर जाल में लटकाएंगे खींचेंगे। ये ऐसे ऐसे पौराणिक कथा और रामचंद्र पे आक्षेप ना करें, रामचंद्र वैदिक व्यक्ति थे, वो पौराणिक किसी ने कथा सुना दी, कौन सी रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी में, जब आपको पता ही नहीं तो बिना प्रमाण के क्यों बोल रहे हो।
क्षत्रिय थे
ये ऐसी कथा मत सुनाओ, क्षत्रिय का क्या अपना भोजन बदल लेगा,
नहीं बदले,
वैदिक व्यक्ति
वे छूट तो है,
कहीं भी छूट नहीं है, मांस की कहीं किसी परिस्थिति में छूट नहीं, गर्दन कट जाएगी, पत्तियां इतनी है जंगल में खाने के तरीके, गुरुकुल में जो सीख लिया पत्ती से जिंदा रहता, पत्ती ही सार्वत्रिक भोजन है, ये तो मरा हुआ भोजन खाते हैं, असली भोजन तो पत्तियां हैं, गुरुकुल में जो वेद का विद्वान है वो भूखा मर जाएगा, पत्ते इतने इतनी ज्यादा ताकतवर है पत्तों में, हाथी खा के बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता है, आपको आप नहीं खा सकते। सारी जड़ी बूटियां जंगल में हैं, गुरुकुल में क्या किया था, जड़ी बूटी नहीं सीखी थी उन्होंने रामचंद्र जी ने, रेगिस्तान में भी बहुत जड़ी बूटियां हैं,
14 वर्ष तक जड़ी बूटियां खाती
है, हाँ कोई वहां सीता रसोई लेकर घूम रही थी और गेहूं साथ में पीस रही थी, जड़ी बूटी खाकर 14,000 राक्षसों को 2 घंटे में मारा था,
हिरण माने को सीख गया था,
ये जब रामायण की कक्षा चलेगी ना तब उसमें रामचंद्र जी के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो निरुक्त के बारे में कर लें। वयो वे बहुवचन है, वय अकस्मात विगति गंधनयो धातु का बहुवचन है। सुपर्णा सुपतना आदि त्रश्मया उपसेदु इंद्रम याचमाना उपोर्णी ही अध्वस्तम चक्षु, लोगों के आंखों को खोल दो क्योंकि मेरे कारण ही उनकी आंखें खुलती हैं, किसी की तो आने के बाद भी नहीं खुलती। आज तो ऐसा हो गया है कि आज तो ये सूर्य रश्मियों की प्रार्थना ही बेकार होगी है क्योंकि उनकी तो आंखें खुलती नहीं, 12 बजे खुलती हैं, किसी ऐसे भी देखे गए हैं कि वो 9 बजे से पहले नहीं उठते, सूर्य सिर पे आ जाता है और तब भी सो रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है परिवारों में, कुछ आर्य परिवारों में भी हो गई है, क्योंकि मैं बहुत लंबे काल से घूम रहा हूँ तो मुझे पता है, कुछ तो आँख ही नहीं खुलती, और तो इसलिए सूर्य रश्मियों की प्रार्थना ही बेकार होगी कि इनकी आँखें खोलनी है तो फिर भी नहीं खुलती। पर अच्छे लोगों के लिए कार्य हमेशा देवताओं का अच्छे लोगों के लिए ही होता है, बुरे लोग तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं, जीवन भर मरते ही रहेंगे। उपसेदु इंद्रम याचमाना उपोर्ण ही अध्वस्तम चक्षु, खोल दो आंखों को मनुष्यों की। चक्षु ख्यायतेरवा चष्टेरवा, या तो ख्या प्रकथने से कुछ कहती रहती है, आंखें भी बहुत कुछ बताती हैं व्यक्ति की, और चष्टेरवा या चक्षु दर्शन से वो देखती रहती है। पूर्धि पूर्य देही इतिवा, तो इनकी आंखों को दे दो क्योंकि अंधे हो गए हैं बिना आपके प्रकाश के, और यह पूर्ति कर दो जिसके लिए आंखें बनी है। मुंचा स्मान पाशे बद्धान, और हमें ऐसे खोल दो जैसे कोई पासों में बंधा हुआ है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखें, शीताम। शीताम का अर्थ है बाहु प्रदेश, ये व्याकरण से कभी नहीं पता लग सकता। शीताम का अर्थ है बाहु प्रदेश, ये कंधा, ये बाहु प्रदेश है जी। अब स्वामी जी महाराज मैं वही चाह रहा हूँ कि देवत कांड तक इनकी प्रतीक्षा की जाए, फिर मैं इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, फिर पाठ नहीं होता। तो इसका पास ये है, जब ये संसार बना, सूर्य बना और सारी चीजें बन गई, तो किंतु सूर्य में कोई प्रकाश नहीं था। ये बात शतपथ ब्राह्मण और वेद के मंत्र भी मानते हैं कि सूर्य में कोई भी प्रकाश नहीं था, भयंकर अंधेरा था उस काल में। तो उस काल में आपे तत्व सूर्य में प्रवेश कर रहा था और कुछ जलना ही प्रारंभ हुआ था, ये उस काल की घटना है। तो जब जलना प्रारंभ हुआ था तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी रश्मियों के, वो पृथ्वी पे आ जाए। जब वो पृथ्वी पे आ ही नहीं सकती थी तो वही उस काल की घटना है, अर्थात वो उससे प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना का अर्थ यह है कि कोई आए और मुझे यहां से निकाल के पृथ्वी पे पहुंचाए, क्योंकि मेरी वहां जरूरत है, यहां तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये उस काल की घटना है। इसमें चार देवता भाग लेते हैं। वसु देवता जो है वो सूर्य वरुण जो है उसको बांधता है, प्रकाश पैदा करता है, घेरे में लपेट लेता है। और वसवो निरतष्ट, वसु जो है सूर्य से प्रकाश को निकाल के, वसु जो 8 देवता हैं वो सूर्य से रश्मियों को, अपने आप दुनिया में कोई घटना नहीं हो सकती, कार्य कारण सिद्धांत के विपरीत है। कार्य कारण दार्शनिकों का भी है और कार्य कारण वैज्ञानिकों का भी है। सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी रश्मियों को भेज दे, गंगा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने आप मार्ग बना के आ जाए, किसी में भी कोई ताकत नहीं है, उसको कोई करने वाला होना चाहिए। सूर्य की रश्मियां वहां से यहां आ रही है तो कोई ना कोई लाने वाला है, तो जो लाने वाला है उसने वो कैसे लाई ये उस घटना को बता रहा है कि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पहले कैसे पहुंचा। ये है इसकी आधिदेविक वैज्ञानिक घटना। पर अगर इन घटना को करने लगे तो फिर पाठ नहीं होता। बात ये है, आरंभ की बात है। इसलिए इनका नाम ऋषि है, ऋषि उसी काल में थे क्योंकि सबसे पहले प्राण लेके आई थी, पहले यहाँ प्राण आपे तत्व। स्वामी जी महाराज सोम है जिसके कारण सूर्य में प्रकाश है। ये बल्ब में प्रकाश किसके कारण है? विद्युत की 2 धाराएं हैं, एक आग्नेय है एक सोम है। सूर्य तो आग्नेय है, सोम है। सोम के बिना विद्युत, आज कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, हमारी चुनौती है विद्युत की 2 धाराएं क्यों है वो नहीं बता सकते। क्यों है इतना तो कहते हैं, क्यों है बताओ। सोना कैसे बना बता, सोने में क्या है? आधुनिक तरीके से सोना बना कैसे, लोहा बना कैसे, कोई चुनौती है वैज्ञानिकों को बता दो, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी बुद्धि वहां तक अभी विकास को प्राप्त नहीं हुई है। तो ये क्यों है? इसी का कारण है कि ये दो ही तत्वों से सारा संसार बना है, और उसमें विद्युत की तरंगों के माध्यम से आगे विकास हुआ था, तो वही इसका ये विद्युत जो है उन दो तरंगों का, अग्नि और सोम का सम्मिलित रूप है, इसलिए दो धाराएं हमेशा होती हैं, उसके बिना विद्युत बन ही नहीं सकती, ना तारों में आ सकती है। तो ये है वो असली घटना। किंतु मैं सारे मंत्रों को ऐसे चलाने का ईश्वर की कृपा से गुरु लोगों का सामर्थ्य है, किंतु पाठ की एक हमारी सीमा है।
सीमा क्या है?
आप लोगों के पाठ 8-10 घंटे हो दिन में पढ़ने के लिए, तो मैं ऐसा चला सकता हूँ। आपके पास है, दूसरों से भी पूछ लो, है ना? आपने तो अभ्यास कर रखा है इन सब का, है वो आचार्य संदीप जी से पूछना एक बार, वो पाठ चला दिया था शतपथ ब्राह्मण का, पहले 4:30 बजे चला, फिर 4 बजे चला प्रातःकाल, फिर 3:30 बजे चला, फिर 3 बजे आ गया, फिर बुखार आ गया, 7 दिन बीमार हो गए, कि शतपथ ब्राह्मण पे पढ़ते पढ़ते मृत्यु हो जाएगी, वेद भी पढ़ना आगे इसलिए पाठ को कम करो। मेरे को कोई समस्या नहीं, मैं तो 8-10 घंटे लगातार बोल सकता हूँ बिना पानी पिए, है ना? मैं तो समर्थ हूं, मैंने तो शरीर को ऐसे तपाया हुआ है, पर आप लोग देख लो। तो क्योंकि वेद भी तो पढ़ना है ना, तो सारी बातें वहां तो, क्योंकि अंतिम ग्रंथ है जो पढ़ना है, वहां तो हम कोई चीज छोड़ के ही नहीं चलेंगे, अभी तो मुख्य मुख्य चीजें ध्यान दे ली जाए, अन्यथा फिर समय की एक सीमा है। तो ये वो घटना है जब प्रकाश भूमि पे नहीं आया था, तो और वो कौन कौन? 4 देवता इसको लाने में बड़ा सहयोग करते हैं। उपसेदु इंद्रम याचमाना हो गया, चक्षु ख्यातेरवा चष्टेरवा, पूर्धि पूर्य देहि इतिवा, पूर्धि को पूरा करो या दो, मुंचस्मान हो गया, पार्श्वत श्रोणित सितामत, पार्श्वत पास से, पार्श्व कहते हैं ना पसली, पसली के पास से, श्रोणित कूले से, और सितामत बाहुओं से, तो सितामत का अर्थ है पंचमी होगी, तहसील हो गया बाहु प्रदेशात, हैं सोरोनी ये कुल्ले के पास वाला हिस्सा, पार्श्वम परशुमय अंगम भवति, पसली क्या होती है? परशु के हथियार होते हैं, और इसी से हथियार भी बने थे देवताओं के लिए, है ना? परशुमयम यथा परशु वर्तते, जैसे पसली से किसी पे हमला करें तो परशु के समान हमला होता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है, ये पसली,
ये
अच्छा चलो, परशु स्पर्शते, क्योंकि ये छूती रहती है पूरे शरीर को, ये इसी के अंदर सारे अंग रखे हुए हैं अधिकतर, ये पसली साइड वाली, ये जो 7-8 दिखती है ना, जिनका कभी फोटो देखा हो, मेरा भी फोटो एक ऐसा है कि एक पसली दिख रही है, 38 किलो वजन रह गया था, है ना? हाँ जो ऊपर ऊपर है, जो फेफड़ों को सुरक्षित रख रही है, हाँ हाँ यही तो दिखती हैं सबकी अलग अलग, ये कमर के हिस्से को छूती रहती हैं, इसलिए इनको परशु कहते हैं, पृष्ठम स्पर्शते संस्पृष्टम अंगयो, और ये सारे अंगों से मिली हुई हैं, अंगम कस्मात अंगनात अगिगतौ, ये चलते रहते हैं इसलिए इनको अंग कहते हैं, अंचनात्वा, और ये क्या करते हैं? अंचुगतौ पूजनायो, इन गति भी करते हैं, ये पूजित भी हैं, अंग ना हो तो व्यक्ति निरंग हो जाए तो हवन करने का भी अधिकार ही नहीं है, श्रोणी श्रोणते, और ये किस लिए है? कि ये गति निमित्त जो चलन कर्म है उसको कहने वाली है, हाँ ये क्या है कि जब व्यक्ति चलता है ना तो दोनों कुहले पशु के या मनुष्य के हिलते हैं, इसलिए उस बात को कह रहे हैं, श्रोणी मतलब कुहले को कहते हैं, गति चला चल चला कर्म, जब ये व्यक्ति चलता है तो अलग से चलते हुए दिखते हैं, श्रोणी तो चलती हुई गच्छत है, उसी को कह रहे हैं, दो शिताम भवती, दो को भी क्या है, जो बाहु है उसको भी शिताम कहा है, दो द्रवते, क्योंकि हाथ भी जब चलता है तो कंधा साथ में चलता है, योनि शीतामिति शाकपूर्णी, उत्पत्ति स्थान को भी शीताम का, विशितो भवति विस्तृत होती है, श्याम तो यकृत इति तैटिकी, और जो तैटिकी आचार्य थे इन्होंने कहा यकृत का अर्थ जो है ना वो शीताम है, यकृत लीवर, श्यामम श्यायते, और ये काला क्यों होता है? क्योंकि ये गति करता है, श्याम रंग वाला होता है, गति करता है, और यकृत यथा कथा च कृत्य, इतना आराम से है कि जैसे भी काट लो फिर बढ़ जाता है। आपको पता है अगर लीवर का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया तो वो फिर बढ़ जाता है वैसे, तो उसी को कह रहे हैं। इनको कितना भारी विज्ञान पता था, यथा कथा च कृत्यते सत्यपि यथा कथा वर्धते, जब भी काट लो फिर आगे अपने आप बड़ा हो जाता है। मतलब शरीर का वही अंग ऐसा है कि उसको अगर उसका कोई हिस्सा ले लिया तो वो अपने आप फिर बढ़ जाता है। लीवर भाई, जब मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो आयुर्वेदाचार्य आपके सामने बैठे हैं तो कोई बात समझ गई तो कह रहे होंगे। आपने किस आधार पे कहा नहीं बढ़ता, आपका ज्ञान क्या है?
डॉक्टरों से सुना
है। वही डॉक्टर अभी तक 10,000 ऑपरेशन लीवर के कर चुके हैं, मतलब लीवर का एक टुकड़ा काट के दूसरा जिसका लीवर निष्क्रिय हो गया उसको लगा चुके हैं, वो वहां भी बढ़ता है यहाँ भी बढ़ता है। तो आपने कौन से डॉक्टर से सुना था उसका नाम बताओ। नहीं, अब ऐसे बिना प्रमाण के बोलना भी असत्य है। अब उस डॉक्टर का नाम बताओ कौन सा था वो, इसका मतलब वो डॉक्टर ही नहीं था जो इस बात को कहता है। हाँ जी, हाँ दूसरे लगा दो वहां भी काम कर देता है वो। ऐसे 10,000 ऑपरेशन सफल हो गए हैं, मतलब 40% तो निष्फल होते हैं, 60% सफल हो जाते हैं। गंगाराम, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में है, उसमें इसकी विशेषता है। हैं? एब्सेस क्या होता है?
ऑपरेशन।
आपने कराया हुआ? हैं?
कराया हुआ।
आपने?
450 ग्राम मवाद
निकाला। अच्छा, इन्होंने कराया हुआ है। अब शब्दों का प्रयोग ना करें यहाँ, और आगे चलें। तो ये यथा कथा च कृत्य थे, जैसे भी काट लो फिर बढ़ जाता है। शिति मांस तो मेद से इसी गाल में, ये मांस को भी कहता है और चर्बी को भी कहता है। शिति शेते शोतनुकरण से है, क्योंकि इसको तनुकरण भी किया जाता है मांस का। मांसम माननम वा, और मांस को मांस क्यों कहते हैं कि मा अननम, मा अननाय अलम भवती थी मांसम, प्राणों के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात वो प्राणों का नाश करने वाला है। जो मांसाहारी है आप देख सकते हैं सभी जीवों को तुरंत थक जाता है, उसमें उस प्राण नहीं होता। ये हमारे आर्य हैं अपने विश्वपाल जयंत जी, वो किसी से लड़े थे एक मुसलमान से, जब वो नए नए ब्रह्मचारी थे पहलवान, तो वो इतना लंबा तकड़ा था, ये भी काफी थे, और वो कहते थे बहुत बकरे बकरे खाता था, तो वो इनको पता था कि भाई ये थकते हैं पहले इनको थकाओ, तो ये जमीन पकड़ ली इन्होंने 10-15 मिनट तक, तो वो खूब इनको खींचता रहा, थक गया, फिर इन्होंने उठा के पटक दिया, पर आखिरकार आर्य होने से मारते नहीं, वो उसका बस चलता तो छोड़ता नहीं, तो इन्होंने बस पटक के छोड़ दिया हरा के उसको। और उदाहरण है दारा सिंह का, और हमारे राम मूर्ति पहलवान है उनका तो भयंकर उदाहरण है, पूरे शाकाहार फलादि अधिक करते थे अधिकतर, और बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने धूल चटाई हुई थी। तो ये मांस खाने वाले की प्राण शक्ति हमेशा ही दुर्बल होती है, ये ध्यान देने की बात है, जल्दी थक जाते हैं। बाद में की बात कब चल रही हो, तो जब नई नई बात की बात करें, बाद में किसने क्या किया हमारा वो नहीं, उस काल में उसने घोषणा की थी। और आगे चलो, तो ये भाई है, ऐसा है। आप कुत्ते को देख लो, है ना, और घोड़े को देख लो, प्रकृति में देख लो ना, मांसाहारी कैसे हाँपते रहते हैं। हाँ, शेर भी हाँपता है, शाकाहारी के अंदर ताकत है, प्राकृतिक भोजन है, और इसलिए मांसम मा अननाय भवती तिवा, जो प्राण के लिए पर्याप्त नहीं अर्थात प्राण की हानि करने वाला होता है। और मानसम वा, और मानसम वा मनसी आनंदिते वर्धते थी मानसम, जो खुश रहता है उसका शरीर में मांस बढ़ता है, इसलिए खुश रहा होगा जब इसका मांस कम दिख रहा है। ये व्याकरण इस बात को कह रहा है, ये इस बात को कह रहा है, मानसम वा मनसी आनंदिते वर्धते, मन खुश रहता है तो शरीर मोटा होता है ना आचार्य जी, ये नहीं देखो आचार्य जी को देख लो प्रत्यक्ष है आचार्य जी हमेशा खुश रहते हैं इसलिए अपना खूब आनंदित है। और मनो अस्मिन सीधति तिवा, और मन इसमें कष्ट को प्राप्त होता है, मांस को देख लिया तो व्यक्ति के कष्ट आ ही जाता है, अपना खून निकल गया कहीं से फट गया मांस, तो मन में विचलित आ जाती है ना, किसी को एक्सीडेंट को देख ले या किसी को जो शाकाहारी है उसको देख ले कहीं टंगा हुआ, तो मन उसमें कष्ट को प्राप्त होता है, इसलिए इसको मांस कहते हैं। तो मेदय मेद्यते और मीमिद सनेन, चर्बी क्या होती है कि अधिक घी खाने वाले को, तेल खाने वाले को चर्बी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मेद्यते है, वो स्नेहन का ही एक भाग है, इसलिए चर्बी अधिकतर उसको बढ़ती है। मेद्यते ईमिद सनेहन है, जो चिकने पदार्थ ज्यादा खाते हैं, ईमिद सनेहन से मेद्य बना है, ध्यान देने की बात है। जो स्नेहन पदार्थ ज्यादा, घी ज्यादा खाओ आप, अपने आप ही वो बढ़ जाता है चर्बी, क्योंकि वो स्रोतों को बंद कर देता है। ये घी कम होता है गाय का, भैंस का, तो महाभिसंधि होता है। अभिसंधि का अर्थ है कि जो पदार्थ हमारे जो स्रोत है ना, आगे पहले भोजन किया रस बना, रस के बाद में जो रक्त, रक्त के बाद में मांस, मांस के बाद में जो स्रोत है आगे जो मेद बनाते हैं, और मेद के बाद जो हड्डी बनती है, इसलिए मोटे व्यक्ति की हड्डी हमेशा कमजोर रहती है, तो वो हड्डी ठीक से नहीं बन पाती, उसका पाक होगा तो हड्डी में ऊर्जा मिलेगी, तो इसलिए उसका मोटापा इसलिए आता है, क्योंकि वो अभिसंधि पदार्थों को ज्यादा खाते हैं, उनके खाने के कारण वो स्रोत बंद हो जाते हैं, तो चर्बी का परिपाक नहीं होता, वो लटक जाती है, इसलिए मोटापा आता है। आगे देखे मेहना चतुर्थ है, यद इंद्र चित्र मेहना अस्ति त्वा आदातम अद्रिव राधन तन्नो विदद्वश उभया हस्ताभ्य आवर। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र, मेहना का अर्थ कर रहे हैं मैं, यह नास्ति, इसके दो अर्थ है, मेहना के ध्यान रखें, मैं यह नास्ति, जो मेरे घर में संपत्ति नहीं है, दूसरा मेहना जो पूजनीय है, जिसकी मुझे अपेक्षा है, फालतू चीजें नहीं। हे इंद्र, यद चित्रम विचित्रम मेहना, मेहना नाम है मंगनीय पूजनीय अथवा मैं यह नास्ति त्वा आदातम अद्रिव, वो तुम्हारे द्वारा मुझे दी जाए, अर्थात मेरी कामना है कि आप वो चीज मुझे लाके दो। राधन तन्नो विदद्वश, ये सब संबोधन है, हे विदद्वश, विदद्वश नाम है, विदद ददाति किम वश धनम, जो धन देने वाले, राधन तन्नो जो धन है उसको हमारे लिए उभाभ्या उभया हस्ताभ्या आवर, दोनों हाथों से दो, इसलिए क्या लिखा सत हस्तमार सहस्रत संकीर, कि हजारों हाथों से दो, इन्होंने तो दो सी बात की, तो ऐसे देना चाहिए दान, ये नहीं, अब जब देगा तो इतना देगा तो कुछ ज्यादा ही आएगा ना इसमें, तो अब 100 रुपए तो दोनों हाथों से देने मुश्किल है, नहीं 100 से कमाओ, ये इसका अर्थ गलत करते हैं कुछ लोग। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, व्याकरण के अनुसार भी, मंत्र के देवता के अनुसार भी,
हाँ हाँ,
नहीं मैं तो वहाँ, मैं तो उनके सामने इसका अर्थ किया था, इसका अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, शब्दार्थ गति अर्थ है, शब्द की किसमें गति हुई है वो अर्थ है। तो सत हस्त समाहार है, निर्वचन क्या होगा, सत हस्त समाहार है, सत हस्त समाहार है, 100 हाथों से अच्छी प्रकार से लाओ, और सहस्त्र रथ संकीर है, सीधा संबंध दोनों का घट रहा है, तो हम उल्टा अर्थ क्यों करें, इसका अर्थ यह है कि 100 कंपनियों से 100 जगह से पैसा आ रहा है, तो क्या उसको 1000 जगह नहीं बांटा जा सकता, एक एक जगह से आपको कल्पना कीजिए आचार्य जी को 10-10 करोड़ रुपए आ रहा है, तो 100 जगह से कितना हो गया, 1 अरब ही हुआ, इतनी गणना कमजोर कैसे है, इतना तो हमने पैसे लाए, और इसके बाद कितनी जगह बांट सकते हैं आचार्य जी इसको, 1000 तो कम लिखा है, इसको 1,00,000 जगह बांट सकते हैं, एक एक गुरुकुल में 1,00,000 रुपए दे दो तो कई 1,000 गुरुकुलों में हो गया, नहीं हो गया, सुनाया है मैंने, बदला नहीं बदला वो उनका कार्य है, ये अर्थ समझ में आता है ना सबको, आगे नहीं आ गया, तो अर्थ करने वाला चाहिए, अर्थ होते हैं वो समझ में नहीं आएगा कि भी कैसे हो सकता है कि 100 से 100 तो रुपए वो 1,000 जगह कैसे दे, अब 10-10 पैसे तो दे नहीं सकते, तो ऐसे सोच रहे होंगे। ओके और आगे चलो, तो इंद्र से धन की प्रार्थना करें, देखिए वेद मंत्रों में मांगने की प्रार्थना है, अगर आपकी कोई समस्या है आपको कुछ चाहिए तो लोगों से कहना ही पड़ेगा, हाँ अब आप इतने कमजोर हैं तो कौन सुनेगा आपकी, ये भी बात ठीक है। आप योग्य बने, योग्य की सब सुनते हैं, परमात्मा ऋषि बनाने के लिए आपको बैठा हुआ है। और आगे चले, यत इंद्र चित्रम चायनियम मंगनियम धनम अस्ति तन में यह नास्ति वा त्रीनी मध्यमानी पदानी, तीन मध्यम पद हो गए, में यह नास्ति तया तद तद दातव्यम अद्रिवन, हे धन वाले वो चीज मुझे आप दे दो। अब देखो वेद में मांगने की प्रार्थना है, और वो दो कह रहे हैं कि भाई सामान्य रूप से नहीं, हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कभी आप थोड़ा बहुत लेके आ जाओ। उभाभ्याम हस्ताभ्याम आभर तो ये कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं मांगने वाला। अब ये कोई भिखारी थोड़ी है कि उसको तो थोड़े से भी काम चल जाएगा, दो ना दो झाड़ दो तो भी काम चल जाएगा। पर ये मांगने वाला और किससे मांग रहा है, इंद्र से मांग रहा है। तो देने वाला भी कौन है, इंद्र है, तो मांगने वाला कौन होगा, कम से कम भरद्वाज जैसा तो हो गई, सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। और दबाव में मांग रहा है कि ऐसे नहीं कि सामान्य रूप से मांग रहा हूं, लेके आना है आपको, धमकी दे के मांग रहा है। तो कोई सामान्य तो नहीं हो सकता, ये धमकी दे के मांग सकते, मतलब उसके अंदर मांगने का सामर्थ्य है, मांग अधिकार पूरा कौन मानेगा, जो योग्य होगा। और देवता किसकी सुनेंगे, ठीक बात। तया च तद दातव्यम अद्रिवन, अद्रि आदृणाति एनेन, अद्रि को अद्रि क्यों कहते हैं, धन को, क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं, आदरयति, इसके द्वारा लोग आदर पाते हैं। क्यों जी, धन के द्वारा आदर पाते नहीं पाते, विद्वत सभा में तो नहीं पाते, मतलब सामान्य जगह पा जाते हैं। अपि वा अत्ते स्यात, या ये अदुद्भक्षणे धातु से है, इसके द्वारा ही लोग खाते पीते हैं।
वज्र को भी अद्रि कहते
हैं, हाँ, यहाँ धन है। ते सोमाद, अब इसका अर्थ कह रहे हैं कि खाने अर्थ में भी है ये, अर्थात अद्रि का अर्थ जो है ना खाने अदुद्भक्षणे से भी बना है, तो उसी को बता रहे हैं। ते सोमाद, सोममत्ती थी सोमाद, हे अद्रिव ते सोमाद अत्र विज्ञायते, विज्ञायते नाम है इसका, ये विज्ञान है, ब्राह्मण ग्रंथ में इसका प्रतिपादन किया गया है। सोममत्ती सोमाद, नहीं सोमाद अलग पद नहीं है, ये तो केवल अद्रि का अर्थ अदय भक्षणे से भी बनता है, ये वेद में बता रहे हैं कि अदय भक्षणे से भी अद्रि बनता है, वो कहाँ बनता है, सोमाद, सोमाद का अर्थ भी सोम को खाने वाले हैं। और हाँ, राधा इति धन नाम है, राधा भी धन नाम है, राधनवंती अनेन, तो इसके द्वारा व्यक्ति राधा साधा संसिद्ध, वो अपनी संसिद्धि कर लेता है, तस्मात धन नाम है। तन न तुम वित्त धनो उभाभ्याम हस्ताभ्याम आभर, किंतु क्या है, तत्त न तुम, वो तुम्हारा जो धन है उसको उभाभ्याम हस्ताभ्याम आभर, दोनों हाथों से हमारे लिए ढोके लाओ। उभव समउपदव भवत, उभव को उभव क्यों कहते हैं कि समउपदव भवत, संपूर्ण भवत, तीन तो हाथ होते ही नहीं है। दमुना पांचवा निर्वचन है, दम मना, जिसका मन दमित है, अपने जिसने अपने मन को रोक लिया है विषयों से, वो है कौन है, वो वेद में दमुना। अब दमुना का अर्थ पता नहीं लग रहा था, खोल दिया, दम मना, दमित है मन, यस। दान मनावा, और दमुना का अर्थ है दान, दाने मनो, यस, जिसका दान देने में मन लगा रहता है कि क्या क्या चीजें दूं। और दांत मनावा, और ये दांत मना भी है, दांत मना नाम है, दमेशु दास्तेशु मनो यस, इंद्रियों को नियंत्रण करने में या दुष्टों को दमन करने में मन है जिसका, वो दांत मना हो गया। संयमी थोड़ी दुष्टों को मार पाएगा, अच्छा अपने अंदर वालों को तो मार लेगा। अपिवा दमैति गृह नाम है, तन मना स्यात, और घर में जिसका मन है वो कौन है, दमुना। यहाँ तो घर किसी का है ही नहीं, सब वैरागी हो गए। गौतम जी आप क्यों हंस रहे हैं, इसका मतलब मन है है तो छुड़वा देंगे, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन और रुक जाओ, तभी तो विद्वान बनोगे और कैसे। ये तो हमारा विशेष कार्य है, घर वालों को भी समझाना, कभी आपके घर वालों से मिलेंगे और उनको समझा देंगे कि कैसे जन्म जन्मांतर आपके सफल कर सकता है, गौतम ऋषि बन सकता है ना, क्यों इसका जीवन खराब कर रहे हो। और आगे चलो, मनो मनोते, और मन कस्मात मनोते, अवबोधने अवबुद्ध्यति अनेन पदार्थ नाम तत्वानीति मन मनोते, जुष्टो दमूना अतिथि द्रोण इमं नो यज्ञम उपयाहि विद्वान विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रुयताम आभर भोजनानि। अब देखो कितनी सुंदर बात कही है। जुष्टो दमूना, जुष्ट नाम सेवित, जुष प्रीति सेवन, जुष्टार्पिते इसलिए आदि उदात्त हो गया, नहीं तो होना चाहिए था प्रत्यय स्वर से अंतोदात होना चाहिए था। दमूना दम मना दांत मना शांत मना वा अतिथि जो है द्रोणे नामे गृह इमम नो यज्ञम उपवाही विद्वान, विद्वान नामे जानन, हे अतिथि अस्माकम द्रोणे जुष्ट सेवित दमुना दम मना इमम यज्ञम उपयाही विद्वान, हम क्या आपसे कराना चाहते हैं ऐसा जानते हुए हे अतिथि आप दांत मन वाले होके हमारे घर में आओ। और विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या, और हे अग्ने विश्वा नाम विश्वानी अभियुज योद्धुम युक्तान जिनको युद्ध में जोड़ दिया है ऐसे शत्रुओं को विहत्या मार करके क्या करो, पहले तो हमारे यज्ञ में आ जाओ, यज्ञ में आके अपना बढ़िया खा पी के ताकत बनाओ, और ताकत बना के क्या करो विश्वा हे अग्ने विश्वानी अभियुज संपूर्णानी योद्धुम युक्तान यस्मिन अस्थानी अर्थात संग्राम में विहत्य शत्रुओं को मार करके शत्रुयताम आभर भोजनानी आत्मने शत्रुचरती शत्रुयतम शत्रुयताम आभर भोजनानी, और शत्रुओं के जितने भी धन है वो हमें लाके दो, क्योंकि धन तो किसी का नहीं है ईश्वर का है, शत्रु मर के धन बेकार जाएगा तो धन लाके प्रयोग करो। अग्नि अतिथि तो अग्नि होता है हमेशा, अग्नि वही देवा नाम अतिथि, अग्नि जो है ना देवताओं का अतिथि है। हाँ जी अग्नि शत्रुओं को मारेगा, अग्नि वृत्राणि जंघनाति, मंत्र लिख लीजिए कैसे मारता है वो, अग्नि वृत्राणि जंघनाति ऋग्वेद का मंत्र है। अग्नि जो है वृत्राणि असुरों को दुष्टों को शत्रुओं को जंघनत हतवान, तो अग्नि ही मारता है शत्रुओं को, बिना अग्नि के दुनिया में कोई घटना नहीं घटित हो सकती, ना कोई किसी चीज का नाश हो सकता है। जंघनत, जंघनत नाम है हतवान घाते अतीति वह, ये अग्नि यज्ञ का अग्नि है, ये अग्नि इस काल में तो यज्ञ का है। शत्रु हैं विषाणु, कुछ ऐसे विषाणु हैं वायरस हैं जो करोड़ों वर्षों तक भी दबे रहते हैं बर्फ आदि में, कभी आपत्ति काल में उभर जाते हैं, बहुत खतरनाक बनते हैं, किंतु संसार में आज तक कोई ऐसी औषधि नहीं जो विषाणु को पूर्ण रूप से नष्ट कर दे, क्योंकि वो क्या है ना जैसे देवी मारती थी ना राक्षस को, जहां भी उसकी बूंद गिरती थी तो वहां उतने असुर पैदा हो जाते थे, है ना, तो वो एक घटना है। तो इसी प्रकार ये अपनी संतति बड़ी तीव्र गति से बढ़ा लेते हैं, एक वातावरण मिलना चाहिए, एक एक साथ में हजारों को पैदा कर लेते हैं, तो इनको मारने के लिए कोई औषधि आज तक ना बनी है ना भविष्य में बनेगी, किंतु वेद में इसका काफी वर्णन है, अथर्वेद में मारने के लिए काफी उपाय है इनको। अभी जैसे वहां दक्षिण अफ्रीका में कहीं आ रहा है ना वो नेबुला या बबूला क्या आ रहा है वहां कि उसमें व्यक्ति के मैंने फोटो देखे नेट पे, तो हाथ ऐसे फूल जाते हैं, मतलब दो तीन दिन में हाथ ऐसे फूल जाएंगे, सारी नस नाड़ियां टूट टूट के बाहर आने लगती हैं, इबोवा इबोवा क्या आ रहा है वो, तो भयंकर वायरस जाग गया कोई। और सबसे बड़ी बात और है, आपको और हमें वायरस से खतरा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतर ये वायरस मांसाहारियों को मारता है, क्योंकि ये वायरस हमेशा गंदगी में पनपते हैं, किंतु जिसके शरीर में गंदगी खा खा के उल्टे सीधे उसको तो खतरा है। आचार्य कह रहे तो बहुत अच्छा है फिर तो आपको हमें तो कोई खतरा ही नहीं, वायरस से वायरस हमसे मरेगा। हाँ हाँ ये तो आचार्य जी अच्छे उपाय है फिर तो वायरस के लिए, है ना,
ये करोड़ों वर्ष तक जीवाणु रहते
हैं जीव, वो विषाणु इनकी, ये इनकी आकृति भी है, किसी के काले मुंह हैं, किसी के लाल मुंह हैं, किसी के पूंछ है, हाँ लंबे काल तक दीर्घायु है, मतलब देवायु है, देवायु क्या होती है हमारी जो आयु है, वो मानुषी आयु है, यानी 360 दिन का एक वर्ष होता है और देवताओं का एक दिन होता है, तो हमारी 100 साल उनके 36,000, तो देव आयु से भी ऊपर उनकी आयु है और हम लोग उनको मार सकते हैं क्योंकि आर्यों ने तो असुरों को भी मारा है और वायरस तो थे ही नहीं उस काल में। देवायु से मैंने बात निकाली है, वैसे क्या है असलियत तो वायरस जाने, पर वो उसकी मनुष्य आयु नहीं है, है ना। और आगे चलें तो ये हो गया, उसको मार करके और उसके धनवन हमें लाके दे दो। अतिथि अभ्यति तो गृहान भवति, अतिथि को अतिथि क्यों कहते हैं, क्यों घरों में बार बार जाता है। अभी तय अतीत इति अतिथि, अभी तय असमंतात अतिथि सातत्य गमनम करोति अतिथि, वो निरंतर गति करता रहता है घरों में। अभ्येति तिथिसु परकुलानिति, अमावस्या पूर्णिमा में यज्ञों में वो घरों में जाता है इसलिए उसको अतिथि कहते हैं। दुरोण इति गृह नाम है, ये घर का नाम है। दुरावा भवंती दुस्तर्पा, ये दुरावा होते हैं, दुखे न अभी तुम योग्य। दुरावा घरों की रक्षा करनी बड़ी मुश्किल है, है ना, कोई कब्जा कर ले, टूट फूट जाए, ये हो जाए, धन भी चाहिए उसके लिए तो। और दुस्तर्पा का कोई ना कोई घर में समस्या रहती है और वो चीज आ जाती तो और अच्छा रहता, ऐसे बना लेते तो और अच्छा रहता, दो चार कमरे बन जाते तो और अच्छा रहता, तो इसलिए दुस्तर्पा भी है। इमामनो यज्ञम उपयाई विद्वान सर्वाग्ने अभियुजो विहत्य शत्रुयता, में सारा आ गया, आभर भोजनानी धनानी विहत्या अन्य साम बलानी, उनके बलों को भी ला दो। बल क्या होते हैं, उनके हथियार आदि होते हैं। शत्रु नाम भवनादाहर, जहाँ शत्रु रहते थे उनके घरों में से सारा कुछ निकाल लाओ। भोजनानी तिजवा धनानी तिवा, या तो अन्नवन खूब पर्याप्त मात्रा में है और या धन भरे हुए हैं। विषाणुओं का बल और भोजन है, उसको लेके आ जाओ, जो भी उनके बल बल थे, प्राण शक्ति थी। अभी तो इसकी घटाओ जो इन्होंने घटाई है, ये स्वामी जी महाराज उनके बल क्या है, उनकी शक्तियां हैं। अब वायरस जो है आसपास के तो मर गए, यज्ञ की जहां तक क्षेत्र है वहां तक तो मर गए, किंतु फिर वो आ जाएंगे। ये तो असुर हैं, ये तो मनुष्य तो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं और फिर लंबे काल में कार्यरत होते हैं, तो कुछ घंटे में हो जाते हैं। इनमें आसुरी शक्ति बड़ी तीव्र गति से विकास करती है, तो घंटों में पैदा हो जाते हैं, तो उनको सारे बलों को लिया, मतलब उनका उत्पत्ति स्थान जो है उसको भी नष्ट कर दो, ये प्रार्थना है। ये इनका और भोजन है, भोजन तो क्या होगा, जहां से ऊर्जा लेते हैं, और बल कहाँ से होगा, जहां से वो बल प्राप्त कर रहे हैं, उनका संगठन है, उनका समुदाय, इनके संगठन भी बड़े जबरदस्त हैं, ऐसे लिपट लिपट के बन जाते हैं आपस में। इसका नाम वेद में है यातुधानम। मूसो मूसी का इत्यर्थ है, मूसा का अर्थ यहाँ मूसी का है, मूसे नहीं है। मूसी का पुनर्मूसनाते, चुराती रहती है, मूसो भी ये तस्माद है, क्योंकि ये भी चुराता रहता है, दोनों मिलकर चुराते हैं। सम्मा तपंती अभिता सपत्नी परशव, मूषो न शिष्णा वेदंती माध्य स्त्रोतारम ते शतकर्तो वित्तम्यस्य रोदिशी। एक व्यक्ति अपनी पीड़ा को बता रहा है कि सम उसको आधी आध्यात्मिक दुख पैदा हो गए हैं, है ना, आध्यात्मिक दुख से दुखी व्यक्ति क्या कहता है, ये घटना है। सम्मा तपंती अभिता, अच्छी प्रकार से चारों ओर से मुझे तपा रही हैं, सपत्नी परशव, जैसे सपत्नी होती ना शत्रुओं की जो शक्तियां हैं उनको, यहाँ सपत्न शत्रु होते ना, सपत्न व्याकरण में आ ही चुका है, सपत्न शत्रव, और उनकी शक्तियां क्या होगी, सपत्नी होगी। तो जैसे अब हमारे दो चार शत्रु हैं मिलके, तो रहेगा कभी पाकिस्तान का डर रहेगा, कभी चीन का रहेगा, कभी किसी का रहेगा, कभी आतंकवादियों को रहेगा, तो जैसे वो हमें तपा रही हैं सपत्नी परशव, परशव का तो अर्थ यहाँ ईट ईट है, ईट जैसे पसली है ना। ये घटना तो क्या है, एक ऋषि है वो कुएं में गिर गया, अंधेरे में कहीं जा रहा होगा, तो वो कुएं में गिर गया, तो अब उसको कोई निकाल नहीं रहा, तो उसको कहाँ दिख रही है, वहां परसवें दिख रही है ईंटें जो लगी हुई हैं, तो वो मुझे तपा रही हैं कि भाई कोई आए और मुझे निकाल ले, यही दिखती है तो डर भी लगता है ना व्यक्ति को, वैसे ऋषि आएगा तो डरेगा क्यों, फिर भी कुएं में पड़ा हुआ करेगा क्या, तो निष्प्रयोजन है ना, तो इसलिए वो मुझे तपा रही है, जैसे शत्रु कोई आ गया हो ना चारों तरफ से उसने मुझे घेर लिया हो, ऐसे ही मुझे ये ईंटें तपा रही हैं। और मूसो इव शिशना वेदंती, और ये मुझे कैसे खा रही हैं, जैसे चूहा जो है किसी पदार्थ में अन्न लगा हुआ हो उसको काट लेता है, ऐसे ही ईंटें मुझे काटने को दौड़ रही है। कुछ व्यक्ति जाते हैं पहाड़ों में कि भाई शांति प्राप्त करेंगे, तपस्या करेंगे, वो करेंगे, तो पहाड़ भी काटने को, ऐसे कई व्यक्तियों को मैं जानता हूँ कि एक महीने दो महीने बाद पहाड़ों से वापस आ गए कि पढ़ना पढ़ाना ही ठीक है, क्योंकि पहाड़ भी काटते हैं, क्योंकि बिना वेद जान के पहाड़ भी वस्तुतः काटने के लिए दौड़ेंगे, क्या करोगे पहाड़ों में बैठ, कुछ दिन घूम फिर के थक जाओगे। जब वेद मंत्रों का साक्षात्कार हो जाएगा और वो उसका ज्ञान हो जाएगा, तो 20,379 मंत्र हैं, एक एक मंत्र में रोज चिंतन करोगे तो इतने वर्ष चाहिए, है ना, तो पहाड़ों में जीवन पार हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे काटने को दौड़ रही है ईंटें। माँ आद्य स्तोतारम, आद्य नाम है मानसिक व्याध है, आद्य मानसिक जो व्याधि होती है ना उनको आद्य कहा है, मानसिक पीड़ा हो रही है, शरीर तो मेरा ठीक ठाक है। स्तोतारम ते शतकर, तू हे इंद्र तेरे स्तोता को ये सारी पीड़ा दे रही है, और तेरा स्तोता यदि पीड़ित रहे तो ये बात ठीक नहीं है। वित्तम यस्य रोदसी, मेरे इस वृत्तांत को आप जान लो और मुझे यहां से निकाल लो। तो ये त्रित ऋषि है, ये कुएं में गिर गया किसी कारण से और वहां से, और हम सब कुएं में गिरे हुए हैं, हम सब ऋषि हैं कुएं में गिरे हुए हैं, वृत्तियों का एक कुआ है रजस तमस रूपी, उसमें हम गिरे हुए हैं, और प्रार्थना करते हैं ना कभी क्रोध आ जाए जिसकी आत्मा पवित्र है, तो बाद में क्या प्रार्थना करता है कमरे में बैठ के, होता है ना, कोई गलती कर दी बाद में प्रार्थना करते नहीं, हे ईश्वर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो लाज रखो हमारी, दोबारा ये वृत्ति नहीं आनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति जिसको पता लगता है, किसी को पता ही नहीं लगता है गलत काम भी था क्या, वो तो क्या प्रार्थना करेगा फिर। हाँ, ये ब्राह्मण में मेरे को पूरा याद नहीं, पर कहाँ आती है, पर आती जरूर है, इसके बारे में मेरा अभी दिमाग नहीं चल रहा कि किस घटना में आई है, पर आई जरूर है। रोदसी नाम है द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी को कह रहा है, उसको उस काल में तो उसके लिए ऊपर द्यावा पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे तो वो है ही, और द्यूलोक कुएं से ऊपर दिख रहा है, तो उन्हीं से प्रार्थना कर रहा है। संतपंती माम अभीता सपत्ने विमा पर सवाय कूप पर सवाय, कुएं की ईंटें हैं, मूसी का आसनातानी सूत्राणी विदंती, जैसे कुछ अन्न लगे सूतों को खा जाती है ऐसे ईंटें मेरे को खा रही हैं। स्वांगाभिधानम वाचा, जैसे वो अपने अंगों को खा लेता है मूसा कुछ नहीं मिलता, तो संतपंती माम अध्य कामा स्तोतारम ते शतः करते हो वित्तम यस्य रोदसी, मेरे इस वृत्तांत को आप ये द्यावा पृथ्वी जान लो, और जब जानेंगे तभी तो बचाएंगे मुझे आप। जानितम यस्य द्यावा पृथ्वी अविति त्रितम कूपे अवहितम एतत् सूक्तम प्रतिबभौ, त्रित जब कुएं में गिर गया था तब उसको इन मंत्रों का साक्षात्कार हुआ था, तो कुएं में गिरना तो अच्छा रहा। त्रित इस मंत्र का ऋषि है, है? ये तो हम आपसे आशा रखते हैं, अन्ना सागर पास में ही तत्र, अब आप चोरों के ऋषु को तुलना मत करो, ऋषि गिरेगा तो ध्यान करेगा वहां, चोर गिरेगा तो चिल्लाएगा, ऋषि तो अच्छा है एकांत में दुनिया से दूर बैठा है, और सूर्य तो दिखेगा तो उससे ऊर्जा ले लेगा, ध्यान से ऊर्जा ले लेगा। घटना है उसको समझा रहे हैं, ऋषि को कोई कष्ट होता है क्या, ये बताइए कष्ट है तो ऋषि कैसा है, वो बता रहा है ऋषि के माध्यम से देवता के विज्ञान को बताया जा रहा है कि आप सब कुएं में गिरे हो इससे निकलो, आप तो भयंकर कुएं में हो, निकालना पड़ेगा आपको। तत्र ब्रह्म इतिहास मिश्रम, ये जो है वेद का और इतिहास दोनों मिले हुए हैं, मतलब वैदिक इतिहास है। हाँ, ऋक मिश्रम गाथा मिश्रम, ऋचा भी मिली हुई है और गाथा भी मिली हुई है। त्रिता त्रिणतमो मेधा बबू, देखियो जो मेधा से इतना बड़ा हुआ था वो कुएं में गिर के ध्यान करेगा या रोएगा, हाँ कोई पैर वैर टूट गया हो तो अलग बात है, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। अपि वा संख्या नाम है अभिप्रेतम स्यात्, तो संख्या का ही नाम है। एक तो द्वित त्रित त्रयो बभू है, एक नहीं था वहां तीन थे, और ये तीन कौन है? सत्य रज और तम, तीन कौन है? ईश्वर जी और तीन कौन है? दीरो पृथ्वी लोग और एक तो द्वित त्रित त्रयो बभू। अब आगे ईशिरेण है, ईशिरेण को कह रहे हैं, ईशिरेण है थोड़ा सा ही बचा, इसको करी देते हैं। ईशिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षी मई पित्रस्य उराय, ईशिरेण नाम है प्राप्ते ने ते तव मनसा मन के द्वारा सुतस्य सोमस्य भक्षी मई, जब सोम का रस निकाल लिया तो उसका भक्षण करें। पित्रस्य राव है, ऐसा मान के करेंगे जैसे हमारे पिता का धन है, ऐसे मान के पिता का धन है तो उसका अच्छी प्रकार से उपयोग करते हैं, नहीं करते, तो ऐसे सोम का उपयोग करें। हे सोम राजन प्रण आयुंसी तारी, और सोम राजा आयु को बढ़ाए, अर्थात सोम पीने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। अहानी सूर्यो वासराणी, जैसे सुन सूर्य जो है दिनों को बढ़ाता है, ऐसे ही ये हमारी आयु को बढ़ाए सोम। सूर्य दिन को ऐसे बढ़ाता है कि पहले जब आया था तो कम प्रकाश था, फिर आया फिर और प्रकाश हुआ, फिर उसके बाद में आया दक्षिणायन, दक्षिणायन जैसे अभी चल रहा है तो अब दिन कम हो गया है, जल्दी छाया हो जाती है, मतलब अब दिन 12 घंटे का नहीं रहा है। तो अब क्या हो गया, जैसे जैसे अब उत्तरायण आएगा दिसंबर में, तो उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य दिनों को बढ़ाएगा, मतलब सूर्य हमारे पास टेढ़ा ना आके सीधा आएगा तो दिन बढ़ जाएगा। ईशिनेन वैष्णेन, ईशिनेन नाम प्राप्तेन, वैष्णेन नाम है कामयुक्तेन इच्छायुक्तेन, और वार्ष्णेन नाम है दर्शनेन, ऋषि दर्शने से बना है। ते मनसा तेरे मन के द्वारा सुतस्य भक्षी में ही सोम का भक्षण करें, जैसे पिता के धन को खा रहे हैं। प्रवर्ध्य चनायंसी हे सोमराजन हमारी आयु को बढ़ाओ, अर्थात अगर आपको अपनी आयु बढ़ानी है तो आप सोम का भक्षण करें, उस औषधि को ढूंढें। अहानी सूर्य वासराणी यथा वर्ध्यति, वासराणी वेशराणी विवासनानी गमनानी इति। वासराणी को वासराणी क्यों कहते हैं दिनों को, क्योंकि वेशराणी गतियुक्तानी भवन्ति, गति होती है सुबह से शाम तक। विवासनानी ये वासरी आच्छादने, ये चीजों को ढक के रखते हैं, सूर्य आता है तो लोग अपने आप को भी ढक लेते हैं। और गमनादी नीति, क्योंकि ये आज कोई दिन कौन सा है कल दूसरा है, ये आते जाते रहते हैं। कुरुतन इति अनर्थका उपजना भवंती, कुरुतन में नकार अनर्थक है, अर्थात ये क्रिया है, इसका क्या अर्थ है? कुरुत हे देवदत्त कार्यम इति अनर्थका नकारस्य उपजना वृद्धि वर्तते, नकार यहाँ खामा खा है। कर्तन हंतन यातन, ये तीन है, कर्तन हंतन यातन, तो मारो काटो और यातना दो। जठरम उदरम भवती असुराम, जठर को उदर कहते हैं, जठराग्नि जिसका नाम है ना, उदर की अग्नि। हमारे शरीर में 14 अग्नियां होती हैं, 14 अग्नि हमारे शरीर में है, ध्यान देने की बात है। कौन कौन सी वो आगे बताएंगे, अभी पाठ कर लें। जगदम अस्मिन ध्रियते धीयते वा, जगदम खाया हुआ भोजन इसमें रखा जाता है या फेंका जाता है, हाँ अमाशय मतलब उदर ही होता है। उधर तो वैसे उधर के क्षेत्र बड़े लंबे हैं, आंतों को भी उधर में रोगों में माना है, किंतु यहाँ पेट की बात है केवल। मरुत्वान इंद्र वृषभो रणाय पिबा सोमम अनुश्वधम मदाय आसिंचन स्वजठरे मध्व ऊर्मी तुम राजाशी प्रदिव सुतानाम, ये अंतिम मंत्र है इस पाद का। हे मरुत्वान इंद्र, आप कौन है? वृषभ भी हैं, सेचन करने वाले भी हैं, और मरुत इसकी सेना है। रणाय नाम है संग्राम आय पीबे सोमम, आपको क्योंकि लड़ने के लिए जाना है तो सोम शाम पी के जाओ, तो सोम पियो। और अनुस्वधम मदाय, और अनु अनुस्वधम का अर्थ है वध नहीं है, अनुस्वधम अन्नस्य पाने पश्चात, स्वधम नाम है अन्न नाम से उपठितम, अन्न पानस्य पश्चात किम कुरुत मदाय हर्षाय भवतु, आपको उत्साह पैदा हो जाएगा शत्रुओं को मारने का, भूखे पेट तो मुश्किल है। आसिंच स्वजठरे मध्य उर्मिम, और अपने उदर में मधु की जो धारा है ऐसे पिता इंद्र धारा बांध के। तम राजासी प्रदिव सुता नाम, हे इंद्र हे प्रदेव इंद्र, तम राजासी सुतानाम, सोम जो निचोड़ लिए गए हैं उसके मालिक आप ही हो, दूसरा देवता नहीं है। मरुत्वान इंद्र मरुत भी तद्वान वृषभो वर्षितम अपाम, क्योंकि जलों को बरसाता है इसलिए वृषभ है विद्युत के रूप में। रणाय रणनीयाय संग्रामाय, संग्राम के लिए तैयार हो जाओ, और क्या करो, पिबे सोमम, सोम को पियो, और अनुषदम अन्नम, अन्न को बाद में, मदाय मदनीयाय, और जहाँ हर्ष होता है ना संग्राम में, संग्राम में ना तो भजन चलते हैं और ना संग्राम में कथाएं चलती हैं, हर्ष होता है, उत्साह पैदा होता है, मारो मारो पकड़ो और मारो, तो ये हर्ष पैदा हो रहा है, और विजय को प्राप्त करो, हर्ष पैदा होता है, तो वही मदाय वो सोम पी के ही होता है। और सोम पी के एक काम और हुआ था पीछे, यह नी ददानी वे है, पृथ्वी को यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, जेत्राय असिंचत्व, हे जीतने वाले आप इसको अपने उदर में सिंचित कर लो। जठरे मधुन उर्मी मधु सोमम इति ओपनिकम, अब देखिए शहद और मधु में, शहद में और सोम में गुणों की कुछ ना कुछ समानता है, ऐसा नहीं कहा जाता, मतलब कुछ ना कुछ निंच भाग जो है कम भाग यहाँ शहद में भी है, क्योंकि सोम भी एक औषधि और शहद क्या है, औषधियों का राजा, क्योंकि सारी प्रकार की औषधियों का रस लेना है तो इकट्ठा शहद में मिलेगा। माद्यते इदम अपि इतरत मधु ए तस्मादेव, ये मधु को जो शहद है ना, मधु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी सोम की तरह ही ताकत देता है। तुम राजासी पूर्वेशु हस्सु सुतानाम, तो पहले भी आप राजा थे, अभी भी आप राजा हैं सोम के निचोड़ने के बाद में। तो ये ईश्वर की कृपा से आप लोगों के सहयोग से ये पाठ पूरा हो गया, समय तो वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, वैसे 9:30 हुई है अभी। ओम शांति, ओम का उच्चारण करेंगे, ओ सभी को सादर नमस्ते।
उधर में 14 दिन कैसे, मुसीबा होने मुसीबा बताते ही चाहिए, अब तो समय है ना।